ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालय की भूमि एवं अन्य अचल संपत्ति की खोज एवं जांच हेतु सरकार द्वारा एक अध्ययन समिति का गठन। एक होकर बजट का बचाव करने का निकपा माओवादी केंद्र के सांसदों को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने किया निर्देश। सत्ता गठबंधन के तीन शीर्ष नेताओं के बीच सिंह दरबार में भेंटवार्ता और भारत के बिहार राज्य में गर्मी के कारण कम से कम 15 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने काठमांडू घाटी के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के नाम पर भूमि, भवन और अन्य अचल संपत्तियों की खोज और जांच के लिए पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितल के नेतृत्व में एक अध्ययन समिति बनाने का निर्णय किया है। कल आयोजित मंत्री परिषद के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय के नाम पर भूमि, भवन और अन्य अचल संपत्तियों की खोज और जांच, संग्रह, संरक्षण, उपयोग, प्रबंधन का अध्ययन कर ठोस प्रतिवेदन देने के लिए समिति का गठन किया गया है। इसी तरह मंत्रिपरिषद की बैठक में उन हाथ हथियारों को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है जिसके पास लाइसेंस है लेकिन यात्रा परमिट नहीं है। उन्हें लाइसेंसधारी द्वारा घर के बाहर ले जा सकता है और यहां तक कि जिन अग्नियात्रों के पास यात्रा परमिट है उन्हें भी निर्दिष्ट स्थानों पर ही ले जाया जा सकता है। सरकार की प्रवक्ता एवं संचार मंत्री शर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के मुताबिक बैठक में भूकंपीय अनुसंधान के संबंध में नेपाल और चीन के बीच समझौता पत्र स्वीकृत करने और पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अख्तियारी देने का निर्णय बैठक ने किया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड, नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के बीच भेंटवार्ता हुई। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आज तीन शीर्ष नेताओं के बीच भेंटवार्ता हुई। मुलाकात के दौरान उनके बीच समसामयिक राजनीतिक विषय पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने पार्टी सांसदों को एक इकाई के रूप में बजट का बचाव करने का निर्देश दिया है। आज ही माओवादी केंद्र की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री प्रचंड ने ताजा राजनीतिक हालात और संसद में पेश किए गए बजट की जानकारी दी और बजट का बचाव करने का निर्देश किया। नेकपा माओवादी केंद्र के संसदीय दल के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे ने बताया कि चूंकि प्रधानमंत्री प्रचंड ने बजट को संतुलित किया है इसलिए उन्होंने इस पर सकारात्मक चर्चा करने और जिन मुद्दों पर बात नहीं बनी है उन पर सुझाव देकर आगे बढ़ने को कहा है। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा है कि देश में सुशासन बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार और दंडहीनता को समाप्त किया जाना चाहिए। आज आलोक नगर स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में देवशंकर पौड़ेल द्वारा लिखित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि अधिकांश नेता और कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के दलदल में फंस रहे हैं। अध्यक्ष नेपाल ने कहा है कि देश में राजनीतिक आंदोलनों से प्राप्त लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए देश और लोगों को केंद्र में रखा जाना चाहिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपभोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जागरण की आवश्यकता है। भक्तपुर के सल्लाघारी में राष्ट्रीय लघु उद्यमी महासंघ नेपाल द्वारा आज से आयोजित राष्ट्रीय लघु घरेलू व्यापार मेला तथा प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। पेयजल मंत्री राजेंद्र कुमार राय ने कहा है कि तीन तहों की सरकार को लोगों के स्वच्छ पानी, पीने का पानी के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। मोरंग के टंकी सीनवासी पेयजल एवं स्वच्छता सामुदायिक संस्था द्वारा बूढ़ी गंगा तीन नेमुआ में निर्मित पेयजल परियोजना का उद्घाटन करते हुए मंत्री राय ने कहा कि पेयजल की समस्या का समाधान संविधान एवं कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश और संघ द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था कर ली गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। वन तथा वातावरण मंत्री नवल किशोर सासोड़ी ने कहा है कि नेपाल की सामुदायिक वन अवधारणा ने वन संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया में ख्याति अर्जित की है। आज काठमांडू में आयोजित नेपाल के सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ की 29वीं वर्षगांठ पर उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र को व्यवहार्य बनाने, उत्पादन बढ़ाने और बिक्री वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत कार्य किए गए हैं। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति ने अभिलेख संरक्षण पहला संशोधन विधेयक 2077 पारित किया है। समिति की आज हुई बैठक ने अभिलेख संरक्षण पहला संशोधन विधेयक 2077 को सर्वसम्मत रूप से पारित किया। काठमांडू महानगर पालिका क्षेत्र के भीतर संचालित सभी सार्वजनिक शौचालयों के मुफ्त उपयोग की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। आज एक नोटिस जारी करके काठमांडू महानगर सूचित किया है कि जिन सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है और संचालन में है, उन्हें सेवा उपभोक्ताओं से कोई शुल्क लेने की अनुमति नहीं है। महानगर निःशुल्क संचालित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के लिए आवश्यकता अनुसार जनशक्ति, सामग्री, रखरखाव और स्वच्छता सहायता प्रदान करेगा। ग्राहकों से शुल्क लेकर संचालित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मालिकों और प्रबंधकों से नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर महानगर की सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाई को एक लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही सरलाही अस्पताल में मौसमी सर्दी व वायरल फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. नवल किशोर ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 300 से अधिक मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिनमें से 100 से अधिक बच्चे होते हैं। डॉ. झा ने बताया कि बच्चों में बुखार, सर्दी, डायरिया व पेट दर्द की समस्या देखी गई है। दांग में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल एक दूसरे से टकराने से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य एक व्यक्ति घायल हो गए। हादसे में मोटरसाइकिल चालक बबई गांव पालिका वार्ड नंबर 4 निवासी 30 वर्षीय राजेश भंडारी और मोटरसाइकिल पर सवार 31 वर्षीय साकार केशी की मौत हो गई, ये जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के बिहार में जबरदस्त गर्मी और हीट वेव से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 10 वो लोग थे जिनके चुनाव में ड्यूटी लगी थी। बिहार सरकार के आपदा प्रबंध विभाग ने बयान जारी कर बताया है कि जिन 15 लोगों की मौत हुई है, मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर और मध्य भारत में जबरदस्त गर्मी और हीटवेव चल रही है। इससे पहले बिहार के एक स्कूल का वीडियो सामने आया था जिसमें बच्चे गर्मी से बेहोश हो रहे थे, कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसके बाद बिहार में स्कूलों को 8 जून तक बंद करने का आदेश दिया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिभुवन विश्वविद्यालय की भूमि एवं अन्य अचल संपत्ति की खोज एवं जांच हेतु सरकार द्वारा एक अध्ययन समिति का गठन। एक होकर बजट का बचाव करने का नेकपा माओवादी केंद्र के सांसदों को प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने किया निर्देश। सत्ता गठबंधन के 3 शीर्ष नेताओं के बीच सिंह दरबार में भेंटवार्ता और भारत के बिहार राज्य में गर्मी के कारण कम से कम 15 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।